तारीख 4 दिसंबर दिन बुधवार। नमस्कार, भारत के साथ मैं हूँ मानसी दाश। राज्यसभा में पास हुआ SPG संशोधन बिल, अमित शाह ने कहा,
इसका अगर किसी का नुकसान होना है तो केवल और केवल अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का होना है। भविष्य में अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो
शुरू हुई जलवायु परिवर्तन को लेकर अहम बैठक, इस बार क्या है मुद्दे?
इनकी एक बैठक हुई थी और उसमें ये कहा गया कि व्यापार का अगर मसला ये नहीं सुलझा तो इसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन का जो लड़ाई है इसमें भी पड़ सकता है।
क्यों हुई कूचबिहार में दो लोगों की लिंचिंग, सुनवाएंगे खास रिपोर्ट।
যে লোকটা ডাকে নিয়ে গেছে বলছে যে আমার এই নম্বরটা কাকো দেন না।
কালবেলা দেখে ওর মৃত্যুর খবর।
খবরে হোগি আর ভি, লেকিন পহলে বিশ্ব সমাচার।
BBC समाचार भूमिका राय से। संसद ने विशेष सुरक्षा समूह SPG संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री और उनके सरकारी आवास पर उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के निकट सदस्यों को ही SPG की सुरक्षा मिलेगी। विधेयक के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके सरकारी आवास पर उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के निकट सदस्यों को भी SPG की सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यह केवल 5 वर्ष के लिए ही होगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई कर रही अमरीकी कांग्रेस की समिति ने कहा है कि उन्हें इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने ट्रंप पर गवाहों को डराने और अपने कर्मचारियों को समन की अनदेखी करने के लिए कहा। व्हाइट हाउस ने महाभियोग की पूरी सुनवाई को एकतरफा बताया है और कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उनके खिलाफ एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक के प्रमुख ने BBC को बताया कि ईरानी परमाणु समझौता परमाणु अप्रसार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यालय में अपने पहले दिन पहुंचे राफेल ग्रॉसी ने कहा कि कुछ समय तक संगठन के लिए ये चिंता का विषय रहा है और ये हमेशा प्राथमिकता में भी रहेगा।
I think it has had huge relevance, huge importance, the issue around...
मुझे लगता है कि इसकी बड़ी प्रासंगिकता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द ये मुद्दा रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये हमारे और खास तौर पर मेरे कार्यकाल के दौरान प्राथमिकता पर है। राफेल ग्रॉसी के शब्द। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा है कि देश की कई बड़ी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए चीन तैयार हो गया है। अपने चीन दौरे के बाद उन्होंने कहा कि एक स्पोर्ट्स स्टेडियम, बहुमंजिला लाइब्रेरी और जल शोधन यंत्र में चीन निवेश करेगा। इसके अलावा देश में पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं के विकास में भी चीन आर्थिक मदद करेगा। उन्होंने कहा, भले ही ये दोनों देश एक दूसरे के हजारों किलोमीटर दूर हैं, मुझे यकीन है कि अल सल्वाडोर और चीन अच्छे मित्र और सहयोगी बन सकेंगे। चीन जैसे एक बड़े देश का हमारा मित्र होना हमारे लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अल्फाबेट कंपनी के अध्यक्ष पद को छोड़ने वाले हैं। उनके बाद दोनों कंपनियों का काम भारतीय मूल के सुंदर पिचाई संभालेंगे। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन का कहना है कि वो ये मानते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब उन्हें अपने पारिवारिक दायित्व निभाने हैं। हालांकि दोनों कंपनी के बोर्ड में रहेंगे। 21 साल पहले सिलिकॉन वैली की एक गैराज में बनी गूगल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने एक आदेश जारी कर देश के 3 बड़े राष्ट्रीय उद्यानों को निजी हाथों में सौंप दिया है। ये निजी कंपनियां ही इन उद्यानों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराएंगी और इनके रख रखाव की जिम्मेदारी भी लेंगी। इन उद्यानों में अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच मौजूद विश्व प्रसिद्ध इग्वाऊ जलप्रपात, रेतीले टीलों वाले 2 बड़े इलाके और उत्तरी ब्राजील के समुद्र तट शामिल हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक इलोन मस्क के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई लॉस एंजलिस की एक अदालत में शुरू हो गई है। मस्क पर मानहानि के दावा ब्रितानी गोताखोर वर्नॉन अर्न्सवर्थ ने किया है, जिन्होंने बीते साल थाईलैंड की एक गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को बाहर निकालने में मदद की थी। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। राज्यसभा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन बिल 2019 कल पास हो गया। लोकसभा में ये पहले ही पास हो चुका है। इस बिल को लेकर सदन में कल काफी बहस हुई और बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने सवालों का जवाब भी दिया। एसपीजी बिल के तहत अब एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आवास में रहने वालों के लिए होगी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को ये सुरक्षा 5 साल तक मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री के परिवार को भी ये सुरक्षा मिलेगी। सुनिए पूरी रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद से।
गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद कल संसद के ऊपरी सदन से एसपीजी संशोधन बिल 2019 पास हो गया। इस बिल पर चर्चा के दौरान सदन में काफी हंगामा देखने को भी मिला। कांग्रेस के कई सदस्यों का कहना है कि ये बिल गांधी परिवार से सुरक्षा वापस लिए जाने के लिए लाया गया है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में सभी सवालों का जवाब दिया। गृहमंत्री ने गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब तक हुए संशोधन केवल गांधी परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे और हालिया संशोधन के बाद एसपीजी सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री को मिलेगी क्योंकि उनके पत्राचार का भी ध्यान रखा जाता है।
वो एसपीजी की सिक्योरिटी जो कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय, उनके निवास स्थान, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, उनके कम्युनिकेशन और उनके पत्राचार की जो सुरक्षा करती है वो डाइल्यूट न हो, इसलिए ये बिल लेकर हम आए हैं। इससे परिवार की सुरक्षा का कोई लेन देन नहीं, वो ऑलरेडी पहले बदल दी चुकी है और इसका अगर किसी का नुकसान होना है तो केवल और केवल अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का होना है। भविष्य में अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो, परंतु इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, ना किसी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का हमारा उद्देश्य है, ना ऐसा हम होने देंगे।
एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद हाल ही में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक देखने को मिली थी। पिछले सप्ताह उनके घर बिना सुरक्षा जांच के एक कार घुस आई थी जिसको कांग्रेस नेताओं ने मुद्दा बनाया था। इस पर भी सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, साथ ही 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर है। उन्होंने कहा,
सीनियर मोस्ट आईजी के पास उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, मगर एक इत्तफाक कभी न हो ऐसा इत्तफाक था, फिर भी हम 0.001% भी चांस लेना नहीं चाहते, इसलिए इंक्वायरी ऑर्डर करी है मैंने।
गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा नहीं हटाई गई होती तो उनकी हत्या ना हुई होती।
जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी और जो कमीशन बैठा था जेएस वर्मा कमीशन, उन्होंने कहा था अगर राजीव गांधी से एसपीजी नहीं हटाई जाती तो उनकी जान बच सकती थी। तो क्या इन लोगों को दिखता नहीं है कि किस प्रकार से इनके परिवार के 2 लोगों ने, एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, इसीलिए एसपीजी बनी। उसके बाद में राजीव गांधी शहीद हो गए क्योंकि एसपीजी हटा दी गई, तो ये क्या तुक हटाने का, कोई तुक तो था नहीं।
एसपीजी बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस जरूर सदन से वॉकआउट कर गई, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी का विपक्षी दल पर हमला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निर्बला कहने पर बीजेपी ने कांग्रेस के सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग की है। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को खोजने का श्रेय चेन्नई स्थित इंजीनियर षणमुगा सुब्रमण्यन को दिया है। नासा के विक्रम लैंडर के पाए जाने की पुष्टि की है और कहा है कि षणमुगा सुब्रमण्यन ने इस नासा के एलआरओ प्रोजेक्ट लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर को लैंडर के मलबे के बारे में बताया था, जिसके बाद नासा ने तस्वीरों की तुलना कर लैंडर का मलबा मिलने की पुष्टि की है। सुनिए बंगलुरु से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आखिरकार चंद्रयान 2 का विक्रम नाम का लैंडर चांद पर दिख ही गया। सितंबर के 7 तारीख को जब विक्रम करीब चंद्रमा से 2 किलोमीटर दूर था तो वह अचानक से झटके से गिर गया। विक्रम को चांद के दक्षिण पोल पर पहुंचना था लेकिन वह करीब 750 मीटर दूर कहीं और गिर गया था। चंद्रयान का ऑर्बिटर और ना ही नासा के सैटेलाइट जो चांद पर नजर लगाए हुए थे कामयाब रहे, लेकिन चेन्नई में एक आईटी प्रोफेशनल षणमुगा सुब्रमण्यन ने विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला।
So I did found a small part of the debris. So what NASA has done on top of it, they have searched.
मैंने विक्रम के मलबे के एक छोटे से हिस्से को खोजा। नासा ने इसके बाद उस जगह के आसपास और भी मलबा खोज निकाला और उस जगह का भी पता लगाया जहां वो गिरा था। हमारे पास तो नासा के पिक्चर थे तो हमें कुछ पता था कि वो कहां गिरा होगा, तो हमने वो जिस जगह गिरा होगा वहां पिक्सल से पिक्सल के द्वारा इसको खोज निकाला। ये थे शनमुगा सुब्रमण्यन के शब्द। उसके बाद शनमुगा सुब्रमण्यन ने नासा को बताया कि वो विक्रम लैंडर के पास होगा और वहां और जांच की जरूरत है। नासा ने उन्हें बताया कि हाँ वो विक्रम लैंडर ही है और ये भी कहा कि बहुत देर से उनका जवाब दिया क्योंकि वो पक्का होना चाहते थे। तो शनमुगा सुब्रमण्यन कौन है और क्या करते हैं?
So I'm a mechanical engineer basically, but I am a IT professional, so I work for an...
मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मगर मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ और काम के अलावा वेबसाइट और ऐप डिजाइन करता हूँ। ये थे शनमुगा सुब्रमण्यन के शब्द। चंद्रयान 2 के कार्यक्रम में विक्रम लैंडर का एक महत्वपूर्ण योगदान था। अगर वह चांद पर उतर जाता और उसके पेट से प्रज्ञान नाम का रोवर निकलकर चांद पर 500 मीटर तक जांच करता तो दुनिया को पता चलता कि वहां पानी है या नहीं, क्योंकि चांद के दक्षिण पोल पर भारत का जांच अनोखा होता। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन यानी COP शुरू हो चुका है। ये सम्मेलन 13 दिसंबर तक चलेगा। सम्मेलन चिली के सेंटियागो में होने वाला था लेकिन वहां जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण अब यह स्पेन के मैड्रिड में हो रहा है। BBC संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने ही संपर्क किया BBC के पर्यावरण पत्रकार नवीन सिंह खड़का को और ये समझने की कोशिश की कि COP में इस बार कौन से मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।
जो ये अभी हाल ही में एक के बाद एक रिपोर्ट्स आए हैं जिनका कहना है कि जो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं जो हम उसके कारण से जो पृथ्वी का तापमान में जो वृद्धि हुआ है इसे काटना है, इसे घटाना है और इसीलिए पेरिस की समझौता हुआ था। लेकिन ये जो हाल ही की रिपोर्ट ये दिखा रहे हैं कि जो समझौता हुआ है और इसके मुताबिक जिस हिसाब से ये हमें घटाना चाहिए था वो नहीं हो रहा और अभी जो देश ने जो प्रतिबद्धता जाहिर किया है प्रेस किए हैं उससे 5 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ तो जो विश्व का जो तापमान वृद्धि है वो 2 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा और ये काफी भयानक स्थिति हो सकता है पृथ्वी की। तो इसीलिए ये जो COP 25 में ये देश के जो प्रतिबद्धता है, जो टारगेट है, वो किस तरह से बढ़ाया जाए सबसे अहम मुद्दा ये है। और देखिए इसके इर्द गिर्द जो है जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं इनके बीच जो झगड़ा है कि किसे करना है, ये जो झगड़ा तो है ही। और उसके बाद जो पैसे की बात है कि जो विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश ये कहते हैं कि अगर हमें घटाना है तो हमें पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये जो सहयोग है ये भी हमें उपलब्ध नहीं है, तो इस पर भी बहुत ज्यादा नेगोशिएशन या फिर विचार होने को है।
भारत को आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे के पूरे सम्मेलन के दौरान, उसका क्या स्टैंड रहने वाला है? सिर्फ पैसे पे ही और तकनीक पे ही बात अटकी हुई है, भारत की कुछ और भी मांगे रही हैं?
भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, ये जो 4 देश हैं ये इनका एक ब्लॉक है, इसे बेसिक कहते हैं, BASIC। इनका ये तर्क रहा है कि धनी राष्ट्र ने जो विकास किया है कर चुके हैं वो और उन्हीं के कारण से उनके जो कार्बन उत्सर्जन हुए हैं उनके कारण से ये जलवायु परिवर्तन हुई है, तो इसीलिए उनको करना है सर्वाधिक कटौती, हमें नहीं। और अगर विकसित देशों से आप पूछे तो वो कहेंगे कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन ये जो द्रुत गति में विकास कर रहे हैं ये देश अगर ये कटौती न करे तो जो कुल कटौती होनी है उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक और बात मैं बता दूं कि जो ये व्यापार का विषय में जो खास करके अमेरिका और भारत ब्राजील से भी इस बारे में झगड़ा शुरू हुआ है, इसके कारण भी ये जो जलवायु परिवर्तन का जो वार्ता है उसका प्रभाव यहाँ भी दिखने लगा है। और हाल ही में ये जो 4 देश मैंने बताया आपको, इनकी एक बैठक हुई थी और उसमें ये कहा गया कि व्यापार का अगर मसला ये नहीं सुलझा तो इसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन का जो लड़ाई है इस पे भी पड़ सकता है, तो चाहे रहे इसका प्रभाव इस बैठक में भी पड़ेगा।
नवीन सिंह खड़का से बात कर रहे थे मोहम्मद शाहिद। कल था अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। इस मौके पर हमने आपको सुनवाई थी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की कहानी जो वकील बने। आज आपको सुना रहे हैं एक खास वेबसाइट राइजिंग फ्लेम की निधि गोयल के बारे में, जिसे 2019 का सर्वोत्तम सुगम्य वेबसाइट का पुरस्कार मिला है। ये वेबसाइट क्यों है खास और इसे किस मकसद से बनाया गया है, सुनिए BBC संवाददाता गुरप्रीत सैनी की रिपोर्ट में।
सर्वोत्तम सुगम्य की वेबसाइट निजी क्षेत्र 2019 का पुरस्कार पा रही है राइजिंग फ्लेम मुंबई। मिस निधि गोयल फाउंडर डायरेक्टर इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर उपस्थित है।
निधि गोयल को उपराष्ट्रपति ने सर्वोत्तम सुगम्य वेबसाइट चलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के मौके पर दिया गया है। नेत्रहीन या लर्निंग डिसऑर्डर वाले लोग निधि की संस्था राइजिंग फ्लेम की वेबसाइट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्सेसिबिलिटी मेन्यू जब खुलता है तो देखिए कॉन्ट्रास्ट प्लस लिखा हुआ है, तो किसी को अगर कॉन्ट्रास्ट कुछ करना है, बिगर टेक्स्ट है, टेक्स्ट स्पेसिंग का ऑप्शन है, तो ऐसे कई सारे एनहांस कीबोर्ड नेविगेशन का ऑप्शंस हैं, तो कई सारे ऐसे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं इस विजिट के थ्रू।
निधि को 15 साल की उम्र में पता चला कि वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित हैं। इस बीमारी में आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। 19 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
मुझे कभी ये नहीं लगा कि हाय सब खत्म हो गया, जो आमतौर से कई विकलांग व्यक्तियों को लगता है जब उन्हें कोई ऐसे बड़ी विकलांगता अचानक से हो जाती है। आई थिंक मेरे परिवार ने कभी ये नहीं फील होने दिया, ये जो हम कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो मुझे वो आश्वासन था कि ये तो जो भी है अंधेरा है वो, लेकिन यहाँ पर एंड में तो कुछ अच्छा होगा ही।
निधि विकलांगों के लिए वेबसाइट बनाने के बाद उनकी मदद के लिए और काम करना चाहती हैं। इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे ऐसे लोग भी इसे मददगार बताते हैं। एक यूजर केतन कोठारी कहते हैं,
काफी सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट मैंने देखी है, काफी सरकारी वेबसाइटें भी देखी है, जहाँ पे सुगम्यता का पूरा अभाव होता है। काश सारी वेबसाइटें ऐसी ही हो। ज्यादातर तो ये अनुभव मिलता है कि बहुत सारे अनलेबल्ड बटन्स होते हैं, या इतनी सारी नेविगेशन कंफ्यूज्ड होती है कि हम लोग पता ही नहीं कर पाते कि वेबसाइट क्या है।
निधि सवाल उठाती हैं कि भारत में हर वेबसाइट विकलांगों के लिए क्यों नहीं हो सकती।
हमारी पूरी टीम आज खुश तो बहुत है कि हमें बेस्ट एक्सेसिबल वेबसाइट का नेशनल अवार्ड मिला है वाइस प्रेसिडेंट के हाथों से, पर मुझे और हमारी पूरी टीम को एक प्रश्न हमेशा रहता है, सता रहा है एक्चुअली, कि ये कैटेगरी अभी तक एग्जिस्ट क्यों करती है। सारी वेबसाइट्स ही एक्चुअली एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो ये हमारा सपना है और मेरा सपना है कि आगे जाकर ये कैटेगरी ख़त्म हो जाए। यानी ऐसा नहीं कि जो काम कर रहे हैं उन्हें सराहा नहीं जाए, पर इतना अच्छा काम हर कोई ही करे।
निधि चाहती हैं कि विकलांगों के लिए भी चीज़ें उतनी ही आसान हों जितनी दूसरों के लिए होती हैं। गुरप्रीत सैनी, बीबीसी दिल्ली।
और अब आगे बढ़ें, उससे पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। भूमिका अखबारों के साथ स्टूडियो में हैं और पूरी टेबल पर अखबार बिखरे हुए हैं। भूमिका, क्या खबर है आज?
जी, पहली खबर तो जो है कि जो नासा के सैटेलाइट जो नहीं खोज पाए वो चेन्नई के एक इंजीनियर ने खोजा, और उन्होंने कहा कि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, तस्वीरें छानना पसंद है मुझे, और वो किया और मैं सफल रहा। तो ये खबर जो है वो आज हर अखबार पे और एक कामयाबी के तौर पे एक गुड न्यूज़ है। तो ये खबर है। इसके अलावा जैसा हमने बताया कि एक खबर का जिक्र करूँ गाज़ियाबाद की, थोड़ी दर्दनाक खबर है, अच्छी खबर के बाद बुरी खबर दे रही हूँ, लेकिन दो बच्चों का गला रेता पत्नी मैनेजर के साथ 8वीं मंजिल से कूद कर जान दी। ये एक कर्ज में डूबे हुए परिवार की कहानी है, जिसमें बहुत कर्ज बढ़ जाने के बाद पूरे परिवार ने एक साथ वहाँ पर मौत हो गई है। और एक खबर आपको बताऊँ कि 51 भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने लगाया 17,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना। ये कल जब सदन में बात हो रही थी तो अनुराग ठाकुर ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये आंकड़े दिए। एक ऐसा ही आंकड़ा कल और आया है जिसमें चिंता की बात है। जिन लोगों के बच्चे IIT IIM में पढ़ते हैं उनके उन परिवारों को खासा चिंता हो सकती है कि बीते 5 सालों में 50 बच्चों ने खुदकुशी की है IIT में, और सबसे ज़्यादा जो खुदकुशी करने का आंकड़ा है वो गुवाहाटी IIT का है, जहाँ 14 बच्चों ने खुदकुशी की है। इसके अलावा लगभग हर, अगर हम ये सोचते हैं कि बॉम्बे और दिल्ली में ऐसे नहीं है, तो बॉम्बे और दिल्ली के भी आंकड़े हैं। यहाँ तक कि IIM में भी 10 लोगों के आत्महत्या करने, 10 विद्यार्थियों के आत्महत्या करने का आंकड़ा आया है।
यानी विद्यार्थियों पर जो पढ़ाई का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है।
जी, पढ़ाई का प्रेशर है, बहुत सारी पीयर प्रेशर भी होता है। कई बार ये रमेश पोखरियाल ने कल ये लोकसभा में बताया, एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बताया था।
जी, एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया से बता दूं, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के प्रतिनिधिमंडल से कल मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि 2018 में भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी उस मामले में जो दलित अधिकार कार्यकर्ता हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हालांकि अखबार ये भी लिखता है कि जानकारों का मानना है कि सरकार को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही इन मुकदमों को जो है वापस लेना पड़ेगा।
जी, एक खबर और, अगर ग्राहकों की बात करें, हमने अभी कल खबर दी थी और हम हमेशा इस खबर पर बने हुए हैं कि जो टैरिफ रेट है मोबाइल के वो बढ़ गए हैं, लेकिन ये अभी तक प्रीपेड मोबाइल के लिए था जो 3 दिसंबर से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए था और 6 दिसंबर से जो है
जियो
के लिए था, लेकिन अब एक खबर ये भी आ रही है कि पोस्टपेड जो ग्राहक हैं उनके लिए भी टैरिफ बढ़ सकता है। हालांकि इसकी कोई घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन आशंका जताई गई है और ये दैनिक हिंदुस्तान अखबार ने अपने हवाले से ये खबर दी है कि पोस्टपेड ग्राहकों के लिए भी टैरिफ जो है वो बढ़ सकते हैं।
एक अच्छी खबर है एनबीटी में, नव भारत टाइम्स में, जो लोग मजदूरी करने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं और उनको राशन नहीं मिल सकता, उनके लिए एक खबर है कि पूरे देश में अगले साल 1 जून से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू हो जाएगा। ये जानकारी दी है उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में। और इसके अनुसार होगा ये कि अगर कार्ड धारक अपने राज्य से दूसरे किसी राज्य में चला जाता है तो वहाँ भी वो किसी दुकान से कार्ड दिखाकर राशन सस्ता चावल गेहूं खरीद सकेगा।
आपने एक अच्छी खबर दी लेकिन मैं एक थोड़ी फिक्र में डालने वाली खबर जरूर बताना चाहूंगी कि फिलहाल तो दिल्ली का माहौल एकदम बढ़िया है, वातावरण अच्छा बना हुआ है, रोज सुबह सूरज अच्छे से उग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, घर में सुरक्षित रहें
क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हुई है
और धुंध गिर रही है जिसकी वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद भूमिका। और अब वक्त है एक खास रिपोर्ट का। बात पिछले महीने की है, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दो व्यक्तियों प्रकाश दास और नबीउल हसन को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। दोनों पर गाय चोरी का आरोप लगाया गया था। हालांकि तस्करी इस इलाके में आम बात है। बीबीसी ने अपनी जांच में पाया है कि प्रकाश दास और नबीउल हसन को मारने की दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
प्रकाश दास और नबीउल हसन दोनों की मौत की कहानियों में एक फोन कॉल का जिक्र आता है, एक संदेहास्पद फोन कॉल का।
रात के 9 बजे वो मेरे बेटे को बुलाकर ले गए और फिर ये कांड घटा।
इसको तो घर से फोन करके बुलाकर ले गया था, फिर सुबह उसकी मौत की खबर आई।
प्रकाश दास और नबीउल हसन को गाय चोरी के इल्जाम में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीट पीट कर मार डाला गया था। हालांकि हसन के चाचा सबीदुल हक कहते हैं कि मामला पैसा छीने जाने का है।
वो थोक का काम करता था, हल्दी चाय पत्ती और बिस्किट जैसे सामानों की। वो बाजार करने के लिए माथा भांगा गया था और वापस आते हुए क्लब के कुछ लड़कों ने उसे चंदा देने के लिए पकड़ लिया, फिर उसके साथ मार धाड़ की। इसके बाद गाय लाकर बांधी। ये बात पूरी तरह झूठी है कि उसने गाय चुराई थी।
4 कमरों का बरामदे, आंगन और दालान वाला पक्की दीवारों का घर हसन की माली हैसियत बयां करते हैं। परिवार वाले हादसे के वक्त हसन के पास एक महंगा मोबाइल, कैश और सोने की अंगूठी वगैरह होने का भी दावा करते हैं। पुलिस के मुताबिक केदारहाट गांव वालों ने वाहन में गाय दिखने और पूछताछ का सही जवाब न मिलने पर प्रकाश दास और नबीउल हसन की बुरी तरह पिटाई की और गाड़ी में आग लगा दिया। वाहन को तहस नहस कर जलाए जाने के निशान मगर सड़क पर नहीं बल्कि हाट से थोड़ा अलग एक प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में दिखते हैं। भीड़ ने खबरों के मुताबिक कथित चोरी की गाय को खेत में छोड़ जाने दिया था। पिकअप वैन परिवार के मुताबिक नबीउल हसन की थी जिसे प्रकाश ड्राइव कर रहा था। प्रकाश हालांकि नबीउल हसन के लिए लगातार काम नहीं करता था। नबीउल की मां आसिया बीबी बार बार बातों में एक फोन की बात करती हैं।
जिस आदमी ने उसे बुलाया उसी ने अगले दिन उसकी मौत की खबर दी। उसने कहा कि ये फोन नंबर किसी को मत दीजिएगा, मुझे परेशानी हो जाएगी।
झिनुक माला दास प्रकाश दास की पत्नी भी इसी तरह का दावा करती है।
मुझे तो पता नहीं किसने फोन किया, पर मैंने फोन पर आवाज सुनी कि पैसा मिलेगा। मुझे उन्होंने बुधवार को फोन करके बताया कि मैं पैसा लेकर लौटूंगा, फिर सुबह में उसके मौत की खबर आई।
हालांकि उनके मुताबिक प्रकाश के पास ये फोन उसकी मौत से चंद दिनों पहले आया था। परिवार वाले बताते हैं कि प्रकाश कुछ ही दिनों पहले पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। बाबू मियां नाम के एक व्यक्ति का जिक्र भी परिवार और मोहल्ले के सभी लोगों की बातों में बार बार आता है। इक्का दुक्का जगहों पर हसन के तस्करी से जुड़े होने की बात भी कही गई है। पिता परीक्षित दास के चेहरे पर दुख साफ पढ़ा जा सकता है।
2 माह पहले तक वो गाड़ी भी चलाता था और परिवार का भी ख्याल रखता था। पिछले 2 महीने में उसके नए दोस्त बन गए। दोस्तों के चक्कर में उसका सर्वनाश हो गया।
इधर पूरे मामले पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चाचा सबीदुल हक,
ममता बनर्जी का
हम ममता बनर्जी के पास जाएंगे पूछने के लिए कि ये कहाँ का कानून है कि चोर पकड़ा जाएगा तो उसे मार देंगे।
सबीदुल हक जो सवाल पूछ रहे हैं वही न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश में पूछा जा रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बनने और लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद से इस मामले पर अलग कानून बनने की बात बार बार उठती रही है। इस इलाके में एक सवाल और भी है। कूच बिहार की तकरीबन 550 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। धावला नदी पर बना पुल तो आज भी खड़ा है। इस पर तो 1971 तक भारत के कूच बिहार से मुगलहाट तक ट्रेन चला करती थी। अभी तक भारत के कई गांव जीरो लाइन के दूसरी तरफ हैं। मवेशी से लेकर नमक तक की तस्करी इन इलाकों में आम सी बात है और कहा जाता है कि इसकी पैठ बहुत गहरी और लंबी है। शायद इसलिए जब बीबीसी ने कई सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस से लेकर प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं से बात करने की कोशिश की तो सब के सब बचते नजर आए। कुछ जगहों पर सरगोशी में बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम किंग पिन के तौर पर लिया जाता है। हमें इस पर प्रतिक्रिया के लिए 2.5 घंटे सफर कर 117 किलोमीटर दूर माल बाजार जाना पड़ा, जहां पार्टी के सीनियर नेता दीप्तिमान सेन गुप्ता ने हमसे कहा,
ये अब पॉलिटिकल कल्चर बन गया है, किसी भी तरह ये घटना को राजनीति का रंग दिया जाए तो मूल जो समस्या है ये समस्या से लोगों का दृष्टि हट जाएगा।
दीप्तिमान सवाल उठाते हैं कि जब सरकारें पहाड़ों से लेकर आदिवासी इलाकों तक के लिए विशेष पॉलिसी बनाती हैं तो यही सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अब तक क्यों नहीं किया गया। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी, कूच विहार, पश्चिम बंगाल।
कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है और चलते चलते सुनते हैं खेल जगत की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह। और आज सबसे पहले बात क्रिकेट की। अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज रॉस टेलर टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। टेलर ने सेडन पार्क स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन ये उपलब्धि हासिल की। 35 वर्षीय टेलर ने अपनी 169वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया और पारी के मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 189 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लाइनल मेसी ने अपनी उपलब्धियों में एक और ताज जोड़ लिया है। वो एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं। लाइनल मेसी ने पेरिस में सोमवार रात हुए समारोह में रिकॉर्ड 6वीं बार बैलन डी ओर अवार्ड जीता है। अमेरिका की मेगन रिपीनो साल की बेस्ट महिला फुटबॉलर चुनी गईं। उन्होंने दूसरी बार ये सम्मान अपने नाम किया है। और अब जाने से पहले बात खो खो की करते हैं। आज मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष खो खो टीम ने सोमवार को एक दिन में 2 मैच जीतकर जारी 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। खेल समाचारों में आज इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। संसद ने विशेष सुरक्षा समूह SPG संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अल्फाबेट कंपनी के अध्यक्ष का पद छोड़ने वाले हैं। उनके बाद दोनों कंपनियों का काम भारतीय मूल के सुंदर पिचाई संभालेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई कर रही अमरीकी कांग्रेस की समिति ने कहा है कि उन्हें इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बीबीसी को बताया कि ईरानी परमाणु समझौता अप्रसार बेहद जरूरी है दुनिया की भलाई के लिए। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने एक आदेश जारी कर देश के तीन बड़े राष्ट्रीय उद्यानों को निजी हाथों में सौंप दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीक पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।